नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौड़। 3 जून 2022 के साप्ताहिक कार्यक्रम की सुर्खियां। यूक्रेन में जारी युद्ध को 100 दिन पूरे हुए, विशाल पैमाने पर मानवीय राहत जरूरतें। अनेक देशों में खाद्य सुरक्षा और कृषि के लिए उर्वरक की आपूर्ति का संकट। यूएन ने समाधान की दिशा में प्रयास किए तेज। स्टॉकहोम प्लस 50 सम्मेलन में पर्यावरण पर मंडराते संकटों से रक्षा के लिए कार्रवाई का आह्वान। कोविड-19 महामारी ने सर्वजन के लिए बिजली सुलभता के लक्ष्य के रास्ते में खड़े किए अवरोध। और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन की नई परियोजना, सुनिएगा एक इंटरव्यू। आपको याद दिलाते चलें कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य वाली खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। वहां मानवीय संकट गहरा रहा है और विशाल स्तर पर मानवीय जरूरतें पैदा हुई हैं। यूक्रेन में घटनाक्रम का असर अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा पर होने की आशंका भी प्रबल हो रही है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय राहत एजेंसियों ने शुक्रवार को कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यूएन ने जरूरतमंद देशों के लिए अनाज और उर्वरक का निर्यात सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हैं। यूक्रेन के लिए संयुक्त राष्ट्र संकट समन्वयक अमीन आवाद के अनुसार यूक्रेन में काला सागर स्थित बंदरगाह पर फंसे अनाज और रूस से उर्वरक की आपूर्ति के विषय में बातचीत जारी है।
1.5 billion people are in need of that food and fertilizers and I hope that the negotiations really go in a smooth manner.
संकट समन्वयक अमीन आवाद कह रहे थे कि दुनिया भर में 1.5 अरब लोगों को खाद्य सामग्री और उर्वरक की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि बातचीत बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ेगी और जल्द ही निष्कर्ष निकलेगा। यूक्रेन में फिलहाल 1,57,00,000 लोगों को मानवीय सहायता व संरक्षण की जरूरत है और ये संख्या निरंतर बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने युद्ध के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की आवाजाही पर नजर रखी है और इनमें वापस देश आ रहे लोग भी हैं। मगर वापस लौटने वालों की एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जिनके घर और संपत्ति बर्बाद हो चुके हैं और अब उन्हें नए सिरे से बनाए जाने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने आगाह किया है कि मानवता और वैश्विक कल्याण पर विशाल जोखिम मंडरा रहे हैं और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए जिन वादों को किया गया था उन्हें पूरा नहीं किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ शिवानी काला।
यूएन प्रमुख ने गुरुवार को स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए ध्यान दिलाया कि वर्ष 1972 के बाद से पृथ्वी की रक्षा करने के लिए केंद्रित प्रयासों में सफलता मिली है और इनमें ओजोन परत का बचाव भी है, मगर उन्होंने पृथ्वी के समक्ष मौजूद 13 पर्यावरणीय खतरों, जलवायु व्यवधान, प्रदूषण और जैव विविधता हानि पर चेतावनी जारी करते हुए कहा कि पृथ्वी की स्वाभाविक व्यवस्था हमारी मांगों से तालमेल नहीं बैठा पा रही है। यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरेश ने कहा,
Today I urge countries to embrace the human right to a clean, healthy environment for all people everywhere, especially poor communities, women and girls, indigenous peoples.
आज मैं तमाम देशों से सर्वजन के लिए और सर्वत्र स्वच्छ व स्वस्थ पर्यावरण के मानवाधिकार को अपनाने का आग्रह करता हूं, विशेष रूप में निर्धन समुदायों, महिलाओं और लड़कियों व आदिवासी जन, युवजन और आने वाली पीढ़ियों के लिए। वैश्विक पर्यावरण और मानवता के भविष्य को बचाने की खातिर हमें अनुलेखन का तरीका बदलना होगा जिसमें प्रदूषण और अपशिष्ट को पुरस्कृत किया जाता है।
यूएन के शीर्षतम अधिकारी ने इन मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन में प्रतिनिधियों से कार्रवाई की पुकार की है। उन्होंने कहा कि सभी देशों को हर किसी के लिए एक स्वच्छ स्वस्थ पर्यावरण के बुनियादी मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे।
कोविड 19 महामारी ने बिजली और खाना पकाने के लिए प्रयोग होने वाले स्वच्छ ईंधन और टेक्नोलॉजी की सार्वभौमिक उपलब्धता की दिशा में प्रगति को धीमा किया है। इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें महामारी के दौरान तालाबंदियों, आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधान समेत उन वजहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिनसे टिकाऊ विकास के सातवें लक्ष्य पर असर हुआ है। पूरे ब्यौरे के साथ यूएन न्यूज हिंदी के प्रमुख महबूब खान।
बुधवार को प्रकाशित इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समय दुनिया भर में लगभग 73 करोड़ 30 लाख लोगों को बिजली मयसर नहीं है और लगभग 2 अरब 40 करोड़ लोगों को अब भी भोजन पकाने में ऐसे ईंधनों का प्रयोग करना पड़ता है जो उनके स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। प्रगति की मौजूदा रफ्तार के अनुसार लगभग 67 करोड़ लोग वर्ष 2030 तक बिजली से वंचित रहेंगे। ये निष्कर्ष ट्रैकिंग SDG 7 द एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट के वर्ष 2022 के संस्करण में प्रस्तुत किए गए हैं जो टिकाऊ विकास लक्ष्य 7 की प्राप्ति के वैश्विक प्रयासों की निगरानी करती है। इस लक्ष्य में सर्वजन के लिए वर्ष 2030 तक आधुनिक ऊर्जा की सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रावधान है। कोविड 19 महामारी के दौरान तालाबंदियों, आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान और वित्तीय संसाधनों को खाद्य व ईंधन कीमतें सुलभ बनाए रखने की तरफ मोड़ने जैसे उपायों ने टिकाऊ विकास लक्ष्य 7 की प्राप्ति की प्रगति को प्रभावित किया है। विश्व के बेहद निर्बल देश विशेष रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले ने स्थिति को और भी ज्यादा जटिल बना दिया है क्योंकि इसके कारण वैश्विक तेल व गैस बाजारों में अनिश्चितता बढ़ी है और ऊर्जा मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडहेनम गेब्रियसिस ने बुधवार को कहा कि पहले से बीमारी की गैर मौजूदगी वाले 30 देशों ने मंकीपॉक्स संक्रमण के 550 से ज्यादा पुष्ट मामलों की खबर दी है। उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि यह संक्रमण पिछले कुछ समय से फैल रहा हो लेकिन इसकी मौजूदगी के बारे में पता न चल पाया हो। और विवरण के साथ शिवानी काला।
डॉक्टर टेड्रोस ने स्वास्थ्य एजेंसी के जिनेवा स्थित मुख्यालय में पत्रकारों से कहा कि जांच पड़ताल जारी है मगर अनेक देशों में एक साथ मंकीपॉक्स की अचानक मौजूदगी से ऐसा लगता है कि ये संक्रमण कुछ समय से मौजूद रहा होगा जिसके बारे में जानकारी नहीं थी। यूएन स्वास्थ्य एजेंसी के मुखिया ने आगाह करते हुए प्रभावित देशों से चौकसी का दायरा बढ़ाने का आग्रह भी किया है।
So far, most cases have been reported among men who have sex with men. These communities are working hard.
मंकीपॉक्स के ज्यादातर मामले समलैंगिक यौन संबंध बनाने वाले पुरुषों में सामने आए हैं तो ये समुदाय अपने सदस्यों को जोखिमों के बारे में सावधान करने और रोकथाम उपायों के बारे में सूचित कर रहे हैं मगर हम सभी को कलंक की मानसिकता का मुकाबला करने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा क्योंकि ये कलंकित मानसिकता न केवल गलत है बल्कि ये मंकीपॉक्स से संक्रमित व्यक्तियों को चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने से वंचित कर सकती है जिससे संक्रमण को रोकना और भी कठिन होगा।
WHO के मुखिया डॉक्टर टेड्रोस के शब्द।
भारत में खाद्य एवं कृषि संगठन भारत सरकार के साथ मिलकर टिकाऊ कृषि की परियोजनाओं पर काम कर रहा है जिसमें जैव विविधता, कार्बन उत्सर्जन में कटौती, भूमि क्षरण और टिकाऊ वन प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यूएन न्यूज हिंदी की अंशु शर्मा ने संगठन के भारत कार्यालय में वरिष्ठ नीति सलाहकार और परियोजना के निदेशक राकेश सिन्हा से बात की जिन्होंने बताया कि ये प्रोजेक्ट पर्यावरणीय सिद्धांतों से पूरी तरह तालमेल स्थापित करता है।
प्रोजेक्ट अपने आप में बड़ा अनोखा है। कृषि से ग्लोबल एनवायरमेंटल बेनिफिट जो है चार तरह के हैं, आपका जैव विविधता हो गई, आप मिट्टी का क्षरण दूसरा हो गया और सतत वन प्रबंधन और चौथा जो है सो आपका क्लाइमेट चेंज। इन चारों को, ये चार फोकल एरिया हैं इस प्रोजेक्ट के। कृषि को किस तरीका से उसमें पद्धति लाई जाए जिससे उसके गलत प्रभाव हमारे प्रोटेक्टेड एरिया के ऊपर नहीं पड़े।
तो कृषि और पर्यावरण क्षेत्र के जो प्राथमिकता है उससे किस तरह तालमेल बिठाया जाएगा, इसके कुछ उदाहरण अगर आप हमें दे सकें।
नहीं, लैंडस्केप का उदाहरण देना चाहेंगे। जैसे हमारा डेजर्ट नेशनल पार्क लैंडस्केप है, डेजर्ट नेशनल पार्क लैंडस्केप जो है जैसलमेर जिले और बाड़मेर जिले में फैला हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पार्क जो है बड़ा अनूठा है। 3162 स्क्वायर किलोमीटर का पार्क है लेकिन उसमें वन क्षेत्र सिर्फ 50 वर्ग किलोमीटर, शेष रेवेन्यू क्षेत्र है। 98 गांव पार्क के अंदर हैं, लोग हैं बड़ी संख्या में मवेशी है और पार्क बना हुआ है आपको एक चिड़िया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए बना हुआ। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अंडे जो है घास में देती है, मवेशी घास खाते हैं। इन दोनों के बीच तालमेल किस तरीका से बनाया जाए ये हमारे लिए चैलेंज होगा। तो पार्क मैनेजमेंट के साथ हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इको ट्रेन पॉलिसी को लेकर के अगर हम होम स्टे शुरू करा पाते हैं विद इन द पार्क तो एक तरीके कंजर्वेशन के साथ कम्युनिटीज का इकोनॉमिक इंटरेस्ट को जोड़ने का भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं।
तो विश्व पर्यावरण दिवस पर सतत कृषि को लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे?
सतत कृषि आगे बढ़े लेकिन उसके साथ जो है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड हो, क्योंकि आज की स्थिति में हम सिर्फ 3 फूड क्रॉप पे डिपेंडेंट हैं। इसको न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए और क्लाइमेट रिजिलियंस को देखते, क्लाइमेट ऋतु परिवर्तन को देखते हुए सतत कृषि विद डाइवर्सिफाइड फूड।
हरित कृषि परियोजना के निदेशक राकेश सिन्हा। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।